प्राणी जो कुछ अनर्थ हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, जो कोई बुरी वासनाएं हैं संसार में आ सकती है, जरूर समाप्त कर दें। हरी कथा सुन रहा हो और चित्त में अनर्थ हो, ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, जरूर होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, और धीरे धीरे अनर्थ दूर हो रहे हैं। भगवान की सेवा भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दत्तम साक्षात्म निवेदनम, ये नौ प्रकार की नौ भक्ता भक्ति भी कर रहा है, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण भी किया है। एकांतिक चित्त से न अन्य अनन्य, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और दूसरों की सेवा नहीं, और किसी दूसरी इच्छा से नहीं, कोई भी कामना से न हो तो अनन्य होगा। ऐसा अनन्य व्यक्ति यदि चित्त में कभी दुर्बल भी हो जाए, अपिचेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साथ ही साथ उसको शुद्ध बना लेते हैं, जगत में पवित्र बना लेते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां कट जाती, ग्रंथि है क्या, चेतन और जड़ में लग गई ग्रंथि। चेतन कौन, परम चेतन भगवान और जीवात्मा। शरीर को हमने आत्मा समझ लिया, ये ग्रंथि। भगवान की कथा छोड़ करके संसारिक लोगों में हम लग गए, ये है ग्रंथि। सारी कथाओं की ये कथाएं भगवान की कथा, हृदय की ग्रंथि को काट नहीं दिया तो कथाएं कहां सुना आपने। एक बनिया था सेठ, रोज हरी कथा सुनने जाता यहीं पर गोविंद जी की, और घर पर इसके बाद में दुकान 10 बजे 11 बजे दुकान पर पहुंच करके दुकान करता। उसके बेटे बहुत ही योग्य अच्छा लड़का था, उसने पिताजी आप कहाँ जाते हैं, अरे अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं है, अभी यहीं यहीं पर आप थोड़ा सा बतलाइए। पिताजी ने नहीं बतलाया तो कहीं से सुन लिया कि गोविंद मंदिर में हरी कथा सुनने के लिए जाता है। तो एक दिन पिताजी कहीं चले गए तो वो भी दुकान से छोड़ करके यहाँ चला गया हरी कथा सुन, और सुन करके भगवान के चरणों में उसकी कथा में ऐसी रुचि लगी कि उसमें धीरे धीरे श्रद्धा निष्ठा रुचि उत्पन्न होने लगी। अब तो वो एक दिन भी न छोड़े। पिता जब आए तो पूछा कि तू कहाँ जाता है रोज, तो गोविंद जी की कथा सुनी। अरे देखो मैं 60 वर्ष 70 वर्ष का हो गया, रोज जाता हूँ, किंतु मैं पकी हुई मछली हूँ, पानी में रहने से भी पानी से हमारा संबंध नहीं। मैं जाता हूँ गोविंद जी के मंदिर में, कथा जरूर सुनता हूँ, किंतु कथा को रख करके तब फिर इस दुकान में आता हूँ। तुम करता ऐसा तुम नहीं कर सकता, तुम तो घर बार छोड़ देगा और उसी में मत हो जाएगा। तो ऐसे कथा से नहीं, सचमुच में उसको ग्रहण करने की नियत से, उसमें हमारा भी सर्वस्व गोविंद जी का ही है, ऐसी भावना के साथ में कथाओं का श्रवण किया जाए तो हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाएंगी, एक मिनट की भी देर नहीं लगेगी, भगवान की चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद में ये जो यहाँ है, सवई पुंसं परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे, इस श्लोक को, श्रीमद् भागवत के श्लोक, इसके पहले भी ऋषियों महर्षियों ने भगवान के प्रेम को बतलाया है। परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति अनुरक्ति हो, किंतु ईश्वर के संबंध में भेग आइडिया कृष्ण को नहीं बतलाया, किंतु समझना चाहिए यही। इसी को चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले रूप गोस्वामी ने एक ऐसी परिभाषा दी कि आज तक कहीं भी वेद उपनिषद भागवत पुराण में कहीं भी उसकी ऐसी परिभाषा नहीं थी। वो क्या, हमने कल बतलाया था, अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्म अज्ञानावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अभी समय हो गया है क्या, 5 मिनट और है, हमको जगह याद करा दें तो हम भी खड़े हो जाएंगे। तो हमने कल इसका अर्थ बतलाया था, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा तन मन वचन भावना आत्मा के द्वारा निरंतर जिमयी राधा कृष्ण युगल की जो सेवा है उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति में एक चीज को जान लेना जरूरी है, कहीं कहीं पर हमारे शास्त्रों में देखा जाता है कि इसमें दो त्रुटियां भी हैं, अप्राप्य और अतिव्याप्य। कहीं कहीं पर भक्ति नहीं है किंतु भक्ति जैसी मालूम होती है, और कहीं कहीं पूर्ण भक्ति है उसको भक्ति जैसे नहीं लगती। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, भगवान को प्रसन्न करना ही भक्ति है, ठीक है, किंतु कहीं कहीं पर ऐसा दिखता है कि जो भगवान का प्रसन्न नहीं होते रोते हैं। यशोदा जी ने कृष्ण के कमर में रस्सी बांध करके बांधने लगी, रोने लगे। ये रोना क्या भक्ति है? इसलिए मालूम नहीं होता कि इसमें भक्ति है, किंतु भक्ति है चुड़ान। यशोदा जी दधि मंथन कर रही, और इतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण को उन्होंने दधि मंथन करना छोड़ करके गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगी, कपड़े से ढक दिया, और कृष्ण के सिर पर सहलाती हुई उनका सूंघती हुई आंखों से आंसुओं की धारा प्रेम की गिरने लगी, रोमांच कम पुलस इत्यादि होने लगी। और इतने में पासी में दूध खोल रहा था चूल्हे पर, उसका औटा करके गर्म किया जाता था दही बनाने के लिए। जब वो खोलने लगा तो साथ साथ में यशोदा जी सोचती कि ये सोच रहा है कि मैं इनकी कोई सेवा में नहीं लग सका। यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है कि कोटि 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 फिर समुद्र बन सकते हैं। जो कुछ दूध है यशोदा मैया का अंश है, और कृष्ण का पेट कितना बड़ा है, दामोदर है, जिसमें अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में समा जाएंगे, पेट में एक जगह एक रोवे में भी नहीं आएगा। तो भूख की इतनी ललक, और साथ साथ में भूख लगी है कृष्ण को, और अलता यशोदा मैया का दूध कभी समाप्त नहीं होगा और कभी वो पूरा पी नहीं सकेंगे। तो मैया हमको कभी दूध अपने सेवा में नहीं लगाएगी, कृष्ण की सेवा में नहीं लूंगा, इसलिए जल करके मर जाना ही अच्छा है। यही सोच करके दूध उमड़ रहा है। यदि हम लोगों का सेवा भगवान की सेवा में न लगे जीवन, तो किस क्रम में आ गई है? केनो आच्छाय प्राण कि सुख लगिया। नरसम दास जी कहते हैं यदि भगवान की सेवा में मैं नहीं लग सका, वैष्णव की सेवा में नहीं लग सका, तो ये जीवन धारण करना व्यर्थ है, मर जाना ही अच्छा है। तो अभी तक अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद में हम लोग जब दर्शन बंद हो जाएगा फिर हम लोग बैठेंगे। आप लोग सभी लोग जाइए दर्शन। गौ प्रेमानंदे राधा गोविंद जी जय जय श्री। भगवान के चरण में भक्ति सिद्ध होनी चाहिए। कुछ कुछ भक्तियां हैं जो शुद्ध नहीं है। जब शुद्ध भक्ति है, जैसे पानी शुद्ध है तो गंदा पानी भी है। जब यही भक्ति सांसारिक वासनाओं से मिल करके हो जाती है तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती। कुछ कुछ थोड़ा बहुत फल तो होता है, इसलिए हम लोग शुद्ध भक्ति भगवान का अनन्य भक्ति करेंगे। संग सिद्धा और आरोप सिद्धा दो प्रकार की भक्ति है जो शुद्ध नहीं है। भक्ति के संग में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो भक्ति कहलाश को लेती हैं किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है। कुछ आरोप सिद्धा है, एक बगीचा बनाया बगीचा बनाना भक्ति नहीं है, किंतु बगीचे से कुछ फल फूल ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं तो वो भक्ति कहला सकती है, यदि ठाकुर जी के लिए हो। आपने तो किया बगीचा बनाया, किंतु आपका बेटा हो सकता है कि उसके फल फूल को बेच दे और अपने घर के काम में लाए, इसलिए बगीचा बनाना भक्ति नहीं हुआ। इस चीज को समझिए। यापस समरम कृतनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दक्ष सप्त आत्म निवेदन, ये 64 प्रकार की जो भक्तियां हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हो, अपने लिए नहीं, तब तो ये शुद्ध भक्ति होगी। किंतु ये न रहे हैं, जैसे एक आदमी खूब दयालु है, सब पर दया करता है, यदि भक्तों में ये दया हो, यदि भक्तों में ये दया हो तो भक्ति है। किंतु यदि भक्त नहीं है, वो अस्पताल बनाया, जैसे हमारे हिंदू जाति के बंबई में अस्पताल हैं, मारवाड़ियों की बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लोगों के भलाई के लिए किया, ये रोग वहां पर दूर किए जाए। मान लिया कि जैसे एक व्यक्ति वो डकैती डाल रहा था, किंतु उसमें कुछ घायल हो गया, मरने को हो गया, वही हिंदू जा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जब निरोग हो गया पूरा, एक दो महीने के बाद में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो जिस घर में वो घायल हुआ था उसका बदला लेने के लिए अपने 10-20 साथियों के साथ बंदूक लेकर के गया। उसके घर के करीब करीब 40 परिवार लोगों को बंदूक से उड़ा दिया। अब ये जो 40 आदमियों को उड़ाया, इसका पाप किस पर लगेगा? किस पर? हिंदुजा पर लगेगा। इसमें पुण्य काम भी है, किंतु ऐसे गलत भी काम हो सकते हैं। बना था अच्छे के लिए, किंतु हो गया यहाँ पर बुरा, इसलिए भगवान नहीं सुनेगा जैसे तुमने क्यों बनाया, या हम तो दूसरों के लिए किया, ये नहीं, उसका फल भोगना पड़ेगा। ये कर्म ही मार्ग ऐसा है, इसलिए शुद्ध भक्ति का होना चाहिए। शुद्ध भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं भगवान का, किंतु हमको बेटा हो जाए, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, हमारी दुकान बिजनेस चल जाए, तो ये भक्ति नहीं होगी। श्रवण कीर्तन करने रहने पर भी नहीं भक्ति होगी, ये गंदी चीज हो जाएगी। इसलिए इन सब का अच्छी तरह से विचार होना चाहिए। भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? साधु संघ में ऐसा, जिसको श्रोताओं से हरि कथा से अतिरिक्त कोई भी लोभ नहीं है। जो श्रोता, जो वक्ता श्रोताओं को प्रणाम करे, आप लोग नहीं रहने से हमारी ये कथा नहीं होगी, मैं पवित्र नहीं हो सकता, इस भावना से यदि कोई कथा कहे, इनके रहने से हमको भगवान की कथाओं की स्मृति होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को प्रणाम किया, उस स्थान को प्रणाम किया, परीक्षित जी को प्रणाम किया। स्थाने स्थितांग तनुवांग मनोभी प्राय तो अजित जीतो अपित्रय लोक। इसलिए कथा वाले जो कह रहे हैं उसको ये नहीं समझे भाग भूसे हैं, बेकार के हैं, ऐसा यदि समझे में उनकी हर कथा नहीं होगी। पैसे की लालच हो तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए वक्ता चाहता है कि हमको अच्छा सा श्रोता मिले, जो कृष्ण की शुद्ध हरि कथाएं हम सुनाएं। इससे होता है क्या, भक्तों के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की वासना जन्म लेती है। कैसे कृष्ण की सेवा करो, इससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति करने से हमारा जन्म जन्म कोटि कोटि जन्मों में उद्धार हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। ऐसी भावना यदि आई तब तो ठीक है, और कृष्ण की सेवा की वासना नहीं आई तो वो कुछ भी नहीं। तो साधु संघ में हरि कथा सुनने से कृष्ण की सेवा करने की वासना उत्पन्न होती है, यही श्रद्धा के रूप में देखी जाती है। श्रद्धा क्या, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, कोटि कोटि विघ्न आने पर भी मैं भगवान की कथा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जैसे प्रहलाद महाराज जी पर कोटि कोटि विपत्तियां आई, मीरा जी के ऊपर में भी विपत्तियां आई, हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में मार करके उनको खत्म कर दिया, तो भी हरि नाम नहीं छोड़ा। खंड खंड जाऊं होई देह प्राण भी चला जाए, तभी मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसे विश्वास का नाम है श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा से भक्ति नहीं होती, देकर के प्रणाम कर लिया, गोविंद जी के यहाँ आकर के प्रणाम कर लिया, इससे भक्ति उतनी नहीं होगी, होगी कुछ, किंतु साधुओं के संग में निरंतर हरि कथा सुनने से तभी हो। इसके बाद में क्या होगा वही साधु लोग बतलाएंगे, देखो भैया ऐसे भक्ति तो होगी नहीं, लौकिक ही भक्ति होगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनक्ष निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, इसके बाद सात आठ स्तर हैं इसके। सबसे पहले साधु संग जितना निर्मल होगा बिना स्वार्थ के तो ये श्रद्धा है। श्रद्धा आते ही कहा कहां से भक्ति होगी, गुरु के चरणों में, अनकंडीशनल सरेंडर हो गुरु के चरणों में बिना किसी शर्त के, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा, बड़ी प्रेम से सेवा करेगा, ऐसा कोई काम ना करे जो उसमें मनुष्य की बुद्धि हो ना? और निरंतर सेवा से उसको प्रसन्न करेगा, परिप्रश्न करेगा उनसे, तब वो बतलाएंगे। तो पहले गुरु करण ना? हरिनाम और दीक्षा, दीक्षा के बाद में कृष्ण से संबंध होता है, उस संबंध से लेकर धीरे धीरे अनर्थ छूटे जाएंगे, जितना ही वो शरण करेगा उतना ही कीर्तन करने लगेगा भगवान का नाम उच्च स्तर से, धीरे धीरे बढ़ते 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 अनर्थ निवृत्त होने लगे और उसको अब निष्ठा आई। निष्ठा माने क्या, बुद्धि की स्थिरता, घर में रह करके भजन करूं कि बाहर में करूं, ये अनिश्चिता भक्ति, मैं क्या करूं किस रूप में भगवान का भजन करूं, अभी संदेह है। हरिनाम दीक्षा तो ले लिया, गुरु के एकांतिक रूप में सेवा नहीं हो रही इसलिए ये सब हो रहे हैं, एकांतिक भक्ति यदि होती तो धीरे धीरे ये संदेह दूर हो जाएंगे, निश्चला बुद्धि हो जाएगी, किंतु बुद्धि पूर्वक। तत्पश्चात धीरे 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 भजन करते करते रुचि आएगी, रुचि आ जाने पर बहुत कुछ संभल जाएगा मां। रुचि नहीं आई, संसार से रुचि भी हट गई, बीच का एक स्थान है जहां से सब समय पतन हो सकता है, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत से लड़के हमारे आश्रम में आए, मैं 50-60 वर्षों से देख रहा हूं, एक दो नहीं हजारों आए, पर थके हुए दो चार रह जाते हैं, बाकी सब चलने में से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि रुचि तो हुई नहीं, सेवा बैठी थी नहीं, और इधर में संसार से कुछ विरक्ति भी हो गई, भजन तो करना चाहते थे किंतु ठीक ठीक पालन नहीं कर सके, बस संसार में फिर लौट आए, उधर रस नहीं मिला, फिर झाड़ू खाने लग गए, पीठ पर रोज झाड़ू पड़ने लगे, वो बल्कि स्वीकार है, किंतु भगवान का भजन करना ये स्वीकार नहीं ठीक से, इसलिए निष्ठा फिर वहीं की खड़ी रह गई। रुचि हो गई तो बहुत काम आसान हो जाएगा, उस समय हरिनाम करते हुए नींद नहीं आएगी, हरि कथा सुनते हुए नींद नहीं आएगी, आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, ये उसका लक्षण है। इसलिए कहते हैं इसके बाद में आसक्ति होगी। आसक्ति कैसे, यदि किसी को किसी व्यवस्थ में आसक्ति हो जाती है फिर वो नहीं चीज छोड़ सकते, भगवान के भजन में पहले आसक्ति हो, और भजन के आसक्ति होने के बाद में भजनीय जो कृष्ण है उनमें आसक्ति आएगी, पहले गोविंद जी के भजन में रुचि हो, आसक्ति हो, और फिर उनमें आसक्ति हो, संसार की सारी आसक्तियां कट जाएंगी जरूर, अनर्थ भी बहुत दूर हो चुकेगा, फिर गिरने का डर कम रहेगा, और जहां भाव उत्पन्न हो गया तो फिर कोई बात नहीं, बहुत रेयर केस में उसका पतन हो सकता है। अपराध यदि वैष्णवों के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, वैष्णवों के प्रति हो, संतों के प्रति हो, तब तो वहां से गिर जाएगा, नहीं तो भाव वास्ते लोग प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, यही प्रेम भी और बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मोहन और अंतिम सीमा मादन, जो राधिका जी में केवल है और किसी में नहीं, यहां तक बढ़ता है। इसमें अनुराग जो प्रेम सब समय रंग में रहता है ये पद्धतियों को नहीं होगा, साधन नहीं है, ये साधन से ब्रज की गोपियों में केवल हो सकता है। यही अनुराग नित्य नवीन यदि बढ़ता है और ऐसा हो अब प्राणियों में भी जन्म लेने की इच्छा। अब प्राणी माने क्या, कभी कभी हिरण होकर के जन्मे। क्यों? ये हिरण कृष्ण को बड़े प्यारे हैं, जब बंसी बजाते हैं हिरण प्रणय से उनके पास में चले जाते हैं और एक तक से उनके तरफ में प्रणय की भिक्षा मांगने लगते हैं। हाँ, मैं तो नहीं जा सकती, हमारे पति लोग बाधक, हमारे गुरुजन लोग बाधक, हमारा धर्म बाधक, कृष्ण के पास में नहीं जा सकते। इसे यदि मैं हिरण होकर के आती तो हमको कोई मना नहीं करता, हमारा पति भी अपने साथ लेकर के कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से यही अनुराग जब और अधिक बढ़ जाता है, अनुराग जसा संविद्ध दशा को प्राप्त होता है। संविद्ध माने क्या, इस चीज को जरा समझो, बहुत कठिन है तभी मैं बतला रहा हूं, थोड़ा सा इंगित देने के लिए, ये कभी काम में आया। राधिका कृष्ण जी प्रेम के विषय हैं, शांत दक्ष सख्य बात्सल्य मधुर रस से ये उनकी उपासना होती है, आराधना, इन रसों का आस्वादन ये करते हैं। अखिल रसामृत सिंधु और मूर्ति हैं ये कृष्णचंद्र जी। राधिका प्रेम की सबसे बड़ी आस्था है, जावत आस्था मैंने यही प्रेम का अनुराग का जो आश्रय और विषय है, विषय कृष्ण कौन, नंदनंदन रसिक शेखर कृष्ण और महाभाव स्वरूप राधिका, ये प्रेम के आश्रय और विषय हैं। जब इनका अनुराग अंतिम सीमा तक पहुंचता है तब वो भूल जाती हैं श्रीमती राधिका जी या गोपियां, ये कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, विशेष करके अपने को भूल जाती हैं और बस तन में हो जाती हैं, बस प्रेममयी बन जाती हैं। उनको शुद्ध बुद्ध नहीं जाती कि मैं रमण हूं, नायिका हूं और ये हमारे रमण है, ये सब भी कुछ याद भूल जाती, बस एकदम एकाग्र होकर उनकी चिंता में रह जाती है। यही राधिका जी का स्वरूप है। राधिका जी कोई महिला नहीं है, ये कृष्ण की पराशक्ति लादनी शक्ति की अंतिम सीमा ही है राधिका जी। ये सब प्रेम के स्तर हमने बतलाया, कहां से, आदव श्रद्धा से लेकर के भाव महाभाव तक अंतिम बतलाया। इसमें साधक जीव अधिक से अधिक भाव तक जाएगा, प्रेम में नहीं जा सकता। प्रेम में कब जाएगा, जब भावास्था समाप्त हो जाएगी, जब उसका परिकर का शरीर प्राप्त हो जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, तब संभव है। इसी को हमारे बृहद भगवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी भक्ति रस के आचार्य ने कुछ बातें बतलाई है। भक्ति के तात्पर्य से भक्तों का तात्पर्य एक होता है, भक्ति के तात्पर्य से भक्तों का तात्पर्य और भक्तों की आराधना के तात्पर्य से कृष्ण के स्वरूपों का तात्पर्य होता है। फिर से समझिए, जैसी भक्ति होगी, जितना उन्नत भक्त होगा, एक साधन करने वाला है, उससे भाव भक्त वाला बड़ा होगा। भाव भक्त से कहीं प्रेमी भक्त हो जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, उससे भी क्रम से ये जितना भक्ति बढ़ती जाएगी भक्तों का तारतम्य बढ़ता जाएगा। और दूसरा, भगवत भक्तों की आराधना के तारतम्य से कृष्ण के स्वरूप का तारतम्य बढ़ता जाएगा। नारायण कृष्ण द्वारकाधी राम ये सब एक तत्व हैं, किंतु एक नहीं है रस की दृष्टि से। राम रास नहीं करा सकते, द्वारकाधीश भी नहीं कर सकते, इसलिए कुछ तारतम्य है, इस चीज को समझना है। इसके तारतम्य से हमारे सनातन गोस्वामी ने पांच प्रकार के भक्तों की बात कही। श्रीमद् भागवत में इसका विश्लेषण किया गया है, उसी से सनातन गोस्वामी ने लिया। ध्रुव को भक्ति के तारतम्य में रखा ही नहीं, श्रीमद् भागवत में गुरु जी का चरित्र वर्णन है। क्या वर्णन, एक छोटा सा उत्तानपाद का लड़का था, उसका नाम शुरू था। उसकी मैया थी सुनीति, उसकी एक और सौतेली माँ थी, उसका नाम था सुरुचि, और उससे उत्तम नाम का एक लड़का था। बड़ी लड़की, बड़ी रानी पुरानी हो गई, अब नई रानी आई है सुरुचि, रुचिपूर्ण, नीति अच्छी नहीं, रुचि, उसको उत्तम लड़का हुआ। वो राजा की गोद में बैठता है, एक दिन राजा की गोद में बैठे उत्तम को देख करके बड़े बेटे ध्रुव को इच्छा हुई राजा की गोदी में बैठूं। राजा देख रहे थे, रानी आंख की तरफ में देखा, आंख से टेढ़ी नजर से बोली कि ध्रुव, तू राजा की गोदी में बैठने योग्य नहीं है, तुम मर करके फिर दूसरा जन्म हमारी गर्भ से लो, तब फिर इनकी गोदी में बैठ सकता, अन्यथा नहीं बैठ सकता। ताना मारा, हमारी कोख से पैदा होने वाला बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, दूसरा नहीं, इसे तुम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता है, राजगद्दी का बैठने का अधिकारी होगा तो राजा की गोदी में बैठेगा, अन्यथा नहीं। वो किसी पीते हुए सांप की भांति बड़ा भीतर से उसको दुख हुआ, वो फुफकार मार करके रोने लग गया। उसके सखाओं ने उसके मैया के पास ले गए, मैया बोली बेटा किस लिए रोता है, वो हिचकी आने लगी, रोते 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 नहीं बकला सका। सखाओं ने बतलाया कि राजा की गोदी में बैठना चाहता था, पिता की गोदी में पिता ने नहीं दिया हिचकी। अच्छा, तुम इस साधारण बात के लिए रो रहे हो, अरे तुम्हारे भैया हरि हैं, उनको बुलाओ और वो ऐसे ऐसे हजारों तुमको राज्य दे देंगे, कोई चिंता मत करो। क्या हमारे भैया हैं हरि? हाँ जरूर है। ऐसा कहने पर मैया से पता पूछने लगा, उन्होंने कहा कि जंगल में है, उसकी आराधना करने से आता है, उनका पता लेकर के रात ही में उठा, मैया को भी नहीं बतलाया, जंगल में चला गया, यहाँ पर सुखार बाघ भालू रहते हैं, मधुबन में, मथुरा में। नारद जी बाई चांस मिल गए, अरे छोटे बालक अभी तुमको जानवर खा डालेंगे, घर में लौट जाओ, तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए, पिताजी से ऐसा होता है, तुम मत करो ऐसी बात। उसने कहा अपने प्राण रहेंगे चाहे जाएंगे, और तो मैं हरि की आराधना यहीं पर कर करके उनको प्रसन्न करके तब मैं लौटूंगा। नारद जी ने उसकी जीत देखी, संक्षेप में बतला रहा है, और उनको भगवान का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आराधना के लिए उनको कहा, घर छोड़ करके चले गए, और जाकर के मधुबन में ही जमुना से थोड़े से हट करके ऊंचे टीला पर मधुबन में हम लोग प्रतिवर्ष जाते हैं दर्शन करने, कठोर तपस्या की, यहां तक कि उन्होंने धीरे 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 अन्न छोड़ दिया, फल मूल छोड़ दिए, थोड़े दिनों के बाद में पानी छोड़ दिया, इसके बाद में हवा भी छोड़ दी, और एकदम समाधिस्थ हो गए, छठवें महीने में पानी डानी हवा सब कुछ छोड़ करके भगवान रण न सके उनको दर्शन दिया। भगवान तो उनकी इच्छा जानते थे, ये राज्य के लिए आया है। दर्शन देने के बाद में उनको 36,000 वर्ष का समझ के पृथ्वी का राज्य दे दिया। जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो ये रोने लग गए, आया था कांच के लिए और हमें चिंतामणि मिल गई किंतु उसका उपयोग नहीं कर सका। यदि भगवान मिले तो जन्मन से अतीत होकर के भगवान का प्रेम पाएगी, ये तो मनुष्य जीवन का फल है, इसलिए ये भक्ति तो हुई किंतु शुद्ध भक्ति नहीं, सकामा भक्ति हुई। ऐसे भक्ति से भगवान प्रसन्न होने पर भी ब्रज का प्रेम नहीं मिलता, दूसरे होते हैं, पहले नंबर में अब आए ज्ञानी भक्त ही शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, और प्रेमास्पद भक्त, ये भक्तों की शुद्ध श्रेणी है। अब इस चीज को समझिए, प्रहलाद महाराज जी को भागवत से लीजिए। कैसे सीता ने उनको लाख मनाया, माने नहीं, भगवान का नाम स्मरण करते रहे। अंत में उसको काट देने की व्यवस्था थी, बीज देने की व्यवस्था थी, सांपों से डसवाए, हाथियों से उसे रंधवाने की चेष्टा थी, आग जला करके उसमें जलाने की चेष्टा थी, पर्वतों से फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया। प्रहलाद जी माने, जब किसी ने कश्यप का वध किया भगवान ने, नृसिंह जी ने, तो कहा जी आप कुछ भर मांग लो, हमारे आने में विलंब हो गया, पहले आना चाहिए। वो उनकी गोदी में बैठ गए, बोले जी मैं बनिया नहीं। बनिया क्या करता है? जैसा भी बनिया होगा, वो कोई चीज लेता है उसके बदले में कोई चीज देता है, पैसा ले लेगा, कोई चीज लेगा उसके बदले में कोई चीज लेगा, दिखलाएगा बढ़िया माल और देगा पैसा घटिया माल, और घटिया माल में भी जरा डंडी मार लेगा, और यदि बनिया और है वह सच्चा तो बाप का बच्चा नहीं। बनिए के लिए कहा गया, कैसा बनिया? यदि बाप का बेटा यदि है तो कैसा होगा? वो सच्चा नहीं रह सकता, कुछ गड़बड़ी करेगा हेर फेर। और यदि सच्चा तो कहा कि वो बनिया का सच्चा बेटा नहीं, वो दूसरे का बेटा था। तो मैं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं बनिया का बेटा नहीं, मैं बनिया नहीं हूं, लेन देन के लिए आपका भजन नहीं किया, मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए हमने किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे अंदर में कुछ गड़बड़ी है, आप कृपा करके हमको यही वर दीजिए, हमारे मांगने की कुछ इच्छा हो तो वो सब समाप्त हो जाए, कोई भी मांगने की इच्छा आपसे न रह जाए। कहीं मैं तो और प्रसन्न हुआ, तुम जरूर कुछ बर मांगो, हमारा दर्शन अमोघ है, जरूर फल होगा, भगवान का दर्शन जरूर है, चाहे जिस रूप में आप दीजिए, कुछ न कुछ फल जो चाहते हैं संसारिक भी चाहते हैं तो जरूर देगा, किंतु बड़ा दुखी होकर के देता है। तो प्रहलाद महाराज जी की परीक्षा ले रहे हैं, कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा जैसे यदि आप बार बार मुझे कहते हैं तो यही दीजिए, हमारे पिताजी ने आपको और आपको भक्तों को बहुत सताया है, इनको सुगति हो जाए, देखो अपना कुछ नहीं। भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे जैसे वैष्णव के कुल में यदि कोई आए उत्तम भागवत तो 21 पीढ़ी के उसके माता पिता सबका उद्धार हो जाए, वो हो जाएगा। और यदि मध्यम कोटि का हो तो 14 पीढ़ी का, और साधारण जिसने भक्ति आरंभ किया है सत्स्वरूप पदार्थ करके शुद्ध रूप में भजन कर रहा है तो उसके सात पुरुष ऐसे ही बिना किसी कहे हुए तर जाएंगे, इसको याद रखना। यदि ऐसा कोई किया तो प्रहलाद जी महाराज जी तो उत्तम भागवत हैं, इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे पीढ़ी में 21 पीढ़ी तक जो माता पिता इत्यादि आएंगे उनका उद्धार कर दिया, ये याद रखो, तुम दूसरा कुछ बर मांगो। प्रहलाद महाराज जी ने अब क्या बर मांगू? हाँ एक बार हमको मांगना है, ये दीजिए आपको छोड़ करके संसार वाले भूल करके माया में लगे हुए हैं, बड़े दुख भोग रहे हैं, बुढ़ापे में तो बड़े दुख भोगते हैं, और यदि मनुष्य जीवन का अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं किया तो कुकर गधे सुकर होंगे, उनकी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए उनकी दुर्गति न हो, उनका सारा पाप मैं ले लूं और मैं जन्म जन्मांतर तक बस भोगता ही रह जाऊं और उनका उद्धार कर दीजिए, ऐसा कोई मांगेगा? भगवान ने कहा ये तू जीत गया, मैं हार गया, हमारी कथाओं को जो सुनेगा कहेगा उनको ही संभव, फिर खुलेगा क्या? कितना?
10 मिनट।
ठीक, उन्हीं का उद्धार होगा। अच्छा ठीक, तो प्रहलाद महाराज जी कैसे हैं उत्तम भागवत? कैसे उसका उदाहरण दिया गया है? जो भगवान के अंदर में समस्त सारे विश्व को सारे प्राणियों को जो दर्शन करते हैं, और जो समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं, चीटी में भी भगवान को देखते हैं, गधे में भी भगवान को देखते हैं, देखते हैं हमारा स्वरूप ये भगवान के सभी दास दासी हैं, भगवान को भूल करके ही आए हैं, तो अभी भगवान के दास ही तो हैं, सबके अंदर में भगवान को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, नृसिंहदेव का समस्त प्राणियों में वे दर्शन करते हैं अपने भगवान को, और समस्त प्राणियों में अपने भगवान को, और भगवान में सारे प्राणियों को दर्शन करते हैं। ये उत्तम भागवत का अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता, तो भी इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त माने क्या? एक ज्ञानी होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी माने जो भगवान का रूप नहीं मानता, उनका गुण नहीं मानता, उनकी लीलाओं को माइक कहता है, ठाकुर जी की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति कहते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं किंतु अभी दर्शन नहीं हो पाता ठाकुर जी के रूप में, तो भी कुछ अच्छा है। ये आरोप तो हम करते हैं ये ठाकुर जी हैं, हम नहीं देख सकते, हम कहेंगे जयपुर का बनाया हुआ है या कहाँ का बनाया हुआ, ऐसा नहीं, ठाकुर जी किंतु अभी दर्शन नहीं हमको मिलते। जिस समय ठाकुर जी हम लोगों को दर्शन का, अभी हम लोग देख रहे हैं इसलिए दिख नहीं गए, जिस समय अपना छोना देख छोड़ देंगे और देखेंगे गोविंद जी की नजर हमारे ऊपर में पड़ जाए, उस समय वो दर्शन दे सकते हैं। इसी भावना से आप लोग आएंगे, दर्शन मत कर, खबरदार आइए कर, दर्शन वो हमारा हमको देखे, उनकी नजर पड़ जाए इसलिए हम आते, नहीं तो सब समय उनको पत्थर के रूप में या दूसरे रूप में हम देखेंगे, ये दर्शन का तरीका है। उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप दर्शन, आपका उनका दर्शन या सबका दर्शन हो जाए। प्रहलाद महाराज जी ऐसे उत्तम भागवत हो, सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं, किंतु उनको भक्त इसलिए कहते हैं भगवान का तो दर्शन करते हैं ये तो ठीक है, किंतु जब नृसिंह भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कौन सी सेवा की? उनके भगवान को भूख नहीं लगती, ये बड़ी मुश्किल की बात है, इसलिए रसोई तो बन नहीं सकती उनके लिए, क्योंकि खाते नहीं, वो तो सर्वव्यापी हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता, उनके पैरों में थकावट नहीं होती, कृष्ण रास में चलते चलते नित्य करते हुए थक जाते हैं, किंतु नृसिंह जी क्या करेंगे, उनके भगवान थकते भी नहीं है इसलिए पैर भी दबा नहीं सकते, इसलिए नृसिंह भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते, बल्कि नृसिंह ही पुत्र जैसा उनका लाल पाल करेंगे, इसलिए वो भक्त तो हैं, महाभागवत भी हैं, किंतु वो कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते, सेवा के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। कोई गुरु कहे ये गुरु जी हमारे भगवान हैं, उनको भूख नहीं है, उनको पंखे की जरूरत नहीं है, उनको पानी की जरूरत नहीं है, वो सेवक क्या कर सकता है अपने गुरु की? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज उत्तम कोटि के भागवत होने पर भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, किंतु भगवान को क्या सेवा करेंगे नहीं कर सके, इसलिए उनकी अपेक्षा हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? ये प्रेमी भक्त हैं, वो तो ज्ञानी भक्त हैं सर्वत्र। यदि कहीं प्रहलाद महाराज जी वृंदावन में पहुंच गए और यशोदा जी की गोद में देखें, या नारद जी भी जाएं, उद्धव भी जाएं, भीष्म पितामह जाएं, सनत सनंदन जाएं और वहां पर बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यशोदा जी उनको कुछ खिला रही हैं, तो ये कहेंगे यशोदा तू तो बड़ी भाग्य, बड़ी भाग्यवान है, कृष्ण तेरे गोदी में खेल रहे हैं, कि तो ये कृष्ण है, जानती हो कौन है? ये परब्रह्म है, ऐश्वर्य शक्ति से भरे पड़े हैं, अखटन घटन पटियसी शक्ति वाले हैं, वो खुद ही खिलाने नहीं जाएंगे, इसलिए प्रेमी भक्त उनसे श्रेष्ठ हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या करते हैं? खाने के लिए भगवान को चारों तरफ से फल मूल संग्रह करके लाते हैं जब वनवास में हैं। सीता जी की चोरी हो गई तो सीता जी के लिए क्या किया? राम जी की इच्छा समझ करके सात समुंदर पार हो करके रावण का ध्वंस करके उसके सोने के भवन और लंका को जला करके सीता जी से निवेदन किया, मैया हमारे पीठ पर बैठ जाओ और राम के यहाँ ले जाऊं। सीता जी ने कहा, बेटा तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, किंतु राम ही जब खुद आएंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी, अभी तेरे पीठ पर नहीं जाऊंगी। राम को आने दे, उनको बुला करके ले आओ, जब आएंगे, रावण का भी कभी केवल लंका जली है, अभी पूरी तरह से सभी लोग नहीं जल पाए, उसका क्या फल होता है ये दिखलाना है, इसलिए सीता जी नहीं गई। उन्होंने किया, एक समय की बात है, हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ में लौट करके राजधानी अपनी अयोध्या में आए। सीता जी माता जी श्रृंगार कर रही, श्रृंगार में सबसे पहला है सिंदूर लाना, यही महिलाओं का सौभाग्य है। तो वो अपने स्नानागार में स्नान करके और सिंदूर भर रही, इतने में कहां से नटखट हनुमान आ गया। अरे मैया तू क्या कर रही है, बेटा तू हाथ भर रही है, ये लाल रंग यहां पर लगा रही थी उसको सुहाग कहते हैं, तो वो सुहाग भर रही। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सुहाग से क्या होता है, हमारे पति सब समय जीवित रहे, मैं कभी विधवा नहीं हूंगी, इसलिए इसे लगा दी, हमारे पति सब समय चिरजीवी और चिर सुखी है। हनुमान जी अच्छी बात है, मैया स्नान करके और चली गई निकल करके। हनुमान जी घुस गए उस स्नानागार में और उसमें पूरे डब्बे में उन्होंने तेल लगा दिया, पूरा लगाया और लगा करके पूरे अंगों में उन्होंने पोत लिया, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगता है। लगा करके क्या किया, रामचंद्र जी की सभा में पहुंच, उसको देखकर के राम सीता सब लोग हंसने लग गए, सारी सभा। रामचंद्र जी पूछा, रहे बेटा ये क्या कर दिया, सीता जी भी हंस रही, ये देखो। तो जब रामचंद्र जी ने पूछा कि ये क्या किया, मैंने सुहाग लगाया। किस लिए सुहाग लगाया, कि आप जीवन जीवी रहे और सुख रहे, आप कभी मृत्यु न हो। वह मेरे लिए लगाया, हाँ क्यों लगाया, अरे मैया लगा रही थी यहाँ पर, केवल सिंदूर लगाने से यदि आप इतने चिरजीवी हो सकते हैं, सारे शरीर में पोत लेने से सही से बहुत अधिक आप चिरजीवी रहेंगे। यह हनुमान जी की, हनुमान जी की सेवा, प्रहलाद महाराज जी करेंगे ऐसी सेवा, नहीं कर सकते। एक समय की बात है, और दो मिनट होगा तो पांच मिनट है। अच्छा, इसी समय में किसी समय रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान थे, हनुमान जी प्रत्येक सेवा में उपस्थित रहते, दिन रात उन्हीं की सेवा में लग रहते, एक क्षण भी बिना राम की सेवा के नहीं दिखता, पानी देने में, चमट डुलाने में, इधर करने में, उधर करने में, कभी सवारी की जरूरत हो तो क्या करते, राम लक्ष्मण दोनों बैठ जाते, परकोटे की जरूरत होती तो अपने पूछ से किला बना देते, सिंहासन की जरूरत होती खुद ही बैठ जाते। एक समय में भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चारों मिल करके बातचीत करने लगे, ये हनुमान जब से आया हमारी सब सेवाएं छीन ली, अब दिन रात कोई सेवा नहीं करने देता, ऐसा हम लोग करें कि सब दिन और रात की 24 घंटों की जो सेवा है वो हम लोग बांट लें, और बांट करके जिसको एक मिनट की सेवा न दें हम ही लोग सब सेवा करें। उन्होंने सब सेवा बांट ली और उस दिन से हनुमान जी को कोई सेवा मिली नहीं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, बड़े व्याकुल हो गए, कैसे करूं क्या करूं। तो वो इन चारों के पास में गए जहाँ रामचंद्र जी बैठे थे, ये लोग सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा जैसे, प्रभु हम अब तो कोई सेवा हमको है नहीं, हमको कुछ सेवा मिलनी चाहिए, तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं इन लोगों से कहता हूँ कि हमको कोई सेवा दे। उन्होंने कहा कि हम सेवा नहीं देंगे, तुमने बहुत सेवा कर लिया। हनुमान जी ने कहा जी एक बात करो, राम को कभी जवाही आ सकती है, इसलिए मैं चुटकी बजाने का काम करूंगा, जब इनको जम्हाई आएगी तभी मैं चुटकी बजाऊंगा। उन्होंने कहा जो राम को तो कभी जीवन में जम्हाई आई नहीं, इसलिए सेवा दे दी जाए, कभी वो उनको जम्हाई नहीं। इसी में हनुमान जी चुटकी बजाने लगे, और जब चुटकी बजाने उनको जम्हाई आने लगी, अब वो खाना पीना भूल करके दिन रात चुटकी बजाया करे, जाने कब उनको जम्भाई आएगी। और सब समय जम्भाई के मारे उनकी सारी सेवा एकदम पूरी तरह से ठप हो गई, कुछ सेवा न कर सके। अंत में हनुमान जी के पास में पहुंचे, भैया तुम सेवा करो, हम भी करें, मिलजुल कर करें। अब तो तुम चुटकी मत बजाओ, नहीं तो उनको नींद नहीं आएगी, कोई सेवा की जरूरत नहीं होगी, तो तब फिर न जाने क्या हो जाएगा, हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। अंत में हनुमान जी को सेवा देने पड़ी। ऐसे हनुमान जी प्रेमी सेवक है। बोलो हनुमान जी की, बजरंग बली हनुमान की, यावर रामचंद्र की, जय जय श्री।